साहित्य कला मंच की ओर से आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को तथा मंच पर उपस्थित हमारे विशाल भारत देश के सुप्रसिद्ध कवियों, गीतकारों तथा व्यंगकारों को राजेश जौहरी का नमस्कार। आज की ये पावन मदिर रात्रि इस खुले आसमान के तले उपस्थित आप सब श्रोताओं को समर्पित है। आप आज अनेकानेक कवियों को सुनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक भोर की पहली किरण फूटेगी, हम, आप और कविगण यूं ही हंसते हंसाते रहेंगे और झूमते मुस्कुराते रहेंगे। तो आइए कार्यक्रम आरंभ करें और फूलों की महक और कलियों की मस्ती लुटाने के लिए इस मंच पर सबसे पहले आमंत्रित करें भाई सुरेंद्र शर्मा को।
सबसे पहले मैं अपनी ओर से और इंडियन एयरलाइंस की ओर से आपसे माफी मांगता हूं। जिसकी वजह से हमें देरी हुई। चार लाइन सुना रही हूं। इसमें आप देखें, कोई आदमी कहीं भी पहुंच जाए लेकिन अपनी औकात नहीं भूल पाता है। दो मास्टर ट्यूशन करके घर आने जा रहा था। रास्ते में बिरला जी की कोठी पड़ी। एक मास्टर दूसरे से बोलो, यार जय मैंने बिरला जी की सारी जायदाद मिल जावे, उनकी कोठियां मिल जावे, उनकी फैक्ट्रियां मिल जावे, तो मैं बिरला जी से ज्यादा कमा सकूं। दूसरो मास्टर बोलो, क्यों बेवकूफ बनावे है तू, बिरला जी से ज्यादा कहियां कमावेगो। तो पहलो मास्टर बोलो, तीन ट्यूशन भी तो करूंगो। चार लाइन सुना रही हूं। दोस्त कह रही है, शर्मा जी जय पति ते जीते जी, कोई लुगाई विधवा हो जावे तो के कहो जावे गो। मैं बोलो, भाया आज तक तो कोई हुई कोनी, और हो जावे तो उन्हें अंतुले कहो जावे गो। चार लाइन और सुना रही हूं। मैं दोस्त कह रही है, शर्मा जी या सीमेंट गोदाम से क्यों गायब हो गई, या बताओ। मैं बोलो, जब आदमी को पेट गोदाम हो जावे है तो सीमेंट तो के पूरे देश ही गायब हो जावे है। बाबा, तो चार लाइन और सुना रही हूँ। आपको याद होगा भागलपुर में पुलिस वालों ने कैदियों की आंखें फोड़ी थी। वैसे मैंने व्यक्तिगत रूप से उनकी इस कार्रवाई का तो समर्थन किया है, क्योंकि जिन्होंने 50-50 हत्याएं की उनकी आंखें क्या उन्हें फोड़ देते तो ज्यादा ठीक था, पर उनके लिए भी इतना काम उन्होंने नहीं करना पड़ते, कहीं हो जाते। रे भागलपुर का पुलिस वालो, थारे में बुद्धि बहुत ही थोड़ी, थे बेकार ही जेल में कैदियां की आंखा फोड़ी। जै थे एक दिन के लिए भी मेरी घराली ने जेल में भेज देता तो सारा कैदी उन्हें देख के अपनी आंख अपने आप ही फोड़ लेता। चार लाइन और सुना रही हूं। मैं पत्नी कह रही है, ए जी थारे दोस्त की तीसरी पत्नी मर गई, थाने शमशान घाट में जानो चाहिए। मैं बोलो, मैं कोनी जाऊं, चाहे वो कितनो भी बुरो मनाओ, मैं उनके दो बार हुई आए, वह एक बार भी कोनी आयो।
आपने अभी सुरेंद्र शर्मा को सुना। अब मैं इस मंच पर हरियाणा से आए हास्य व्यंग के महान शिल्पी भाई ओम प्रकाश आदित्य को आमंत्रित कर रहा हूं।
पहले कभी सुनाऊंगा दो तीन।
हाँ, पहले कविता सुना रहा हूँ दो तीन, उसके बाद रचना सुनाऊंगा। एक कविता है, पहले आपके ही प्रांत से संबंधित है, बम्बई से ही। इसमें एक नहीं कविता सुना रहा हूँ, पहले इसमें एक शब्द आता है भद। भद मेंढक की एक जाति होती है, मेंढकों में बड़ा मेंढक होता है जो बोलता है तो अपने आप को बहुत फुला लेता है, उसका पेट भी गर्दन भी बहुत फूल जाते हैं, बरसात के दिनों में बहुत बोलते हैं वो। कहते हैं कि कभी तालाब पर पानी पीते हुए उसने भद ने किसी हाथी को देख लिया था, तो उसके स्वरूप को देखकर उसने कोशिश की कि मैं भी हाथी हो जाऊंगा, तो तब से कहते हैं बोलता है तो पेट को भी बहुत फुलाता है और गर्दन को बहुत फुलाता है, भद उसको कहते हैं। कि भ्रष्टाचार करो पर तोल तोल कर करो, यानी भ्रष्टाचार की हद होती है। भ्रष्टाचार करो पर तोल तोल कर करो, अन्न तुले करोगे तो केंद्र रूठ जाएगा। कि भ्रष्टाचार करो पर तोल तोल कर करो, अन्न तुले करोगे तो केंद्र रूठ जाएगा। स्वार्थ के धनुष पर बांस को चढ़ाओगे तो तीर नहीं छूटेगा, धनुष टूट जाएगा। स्वार्थ के धनुष पर बांस को चढ़ाओगे तो तीर नहीं छूटेगा, धनुष टूट जाएगा। होकर सियार ऊंट की खुराक खाओगे तो पेट फट जाएगा, ये भंडा फूट जाएगा। होकर सियार ऊंट की खुराक खाओगे तो पेट फट जाएगा, ये भंडा फूट जाएगा। हाथी जैसा मद लिए घूमते हो प्यारे, अब भद से फिरोगे जब पद छूट जाएगा, भद से फिरोगे तब पद छूट जाएगा। एक और देखें कि फिर से चुनाव की लहर ने कहर ढाया, नदिया के साथ कैसे कैसे नाले बह गए। फिर से चुनाव की लहर ने कहर ढाया, नदिया के साथ साथ नदिया के साथ कैसे कैसे नाले बह गए। उल्लुओं को अम्बुआ की डार पर देखकर हौसले बसंत के अनंत तक दह गए। उल्लुओं को अम्बुआ की डार पर देखकर हौसले बसंत के अनंत तक दह गए। भारत में कभी गंगू तेलियों का राज होगा, जाते जाते राजा भोज मंत्रियों से कह गए। भारत में कभी गंगू तेलियों का राज होगा, जाते जाते राजा भोज मंत्रियों से कह गए। चांद से चरित्र वाले नेता सब चले गए, नेताओं के नाम पर ये कलंक रह गए, नेताओं के नाम पर ये कलंक रह गए। कि मोर करते हैं शोर, मोर करते हैं शोर, ढोर खुले चरते हैं चोर, भी स्वतंत्र डोलते हैं मेरे देश में, आजादी हमारे देश। मोर करते हैं शोर, ढोर खुले चरते हैं चोर, भी स्वतंत्र डोलते हैं मेरे देश में। आत्मा का अनमोल धन बेच कर लोग सोने की दुकान खोलते हैं मेरे देश में। आत्मा का अनमोल धन बेच कर लोग सोने की दुकान खोलते हैं मेरे देश में। जनता को न्याय की तुला पे नेता तोलते हैं, नेताओं को सिक्के तोलते हैं मेरे देश में। जनता को न्याय की तुला पे नेता तोलते हैं, नेताओं को सिक्के तोलते हैं मेरे देश में। गधे गद्दियों पे बैठे काग बांचते पुराण, उल्लू अंग्रेजी बोलते हैं मेरे देश में, उल्लू अंग्रेजी बोलते हैं मेरे देश में। और इंदिरा जी का कितना वर्चस्व आजकल देखें, क्या खिला रही है लोगों को। के रूठ कर बोला एक आपकी, मैं पार्टी को छोड़ कर जा रहा हूँ, देवी बोली जाइए। रूठ कर बोला एक आपकी, मैं पार्टी को छोड़ कर जा रहा हूँ, देवी बोली जाइए। जाते जाते बोला दोष आप में दिखाऊंगा, मैं जनता को देवी बोली शोक से दिखाइए। बीते कुछ दिन गिन गिन कुर्सी के बिन, बोला आना चाहता हूँ, देवी बोली आइए। के बीते कुछ दिन कुर्सी के बिन गिन गिन, बोला आना चाहता हूँ, देवी बोली आइए। भाग कर आया बोला आ गया मैं कहाँ बैठूं, देवी बोली अभी द्वार पर बैठ जाइए। भाग कर आया बोला आ गया मैं कहाँ बैठूं, अभी द्वार पर बैठ जाइए। और आपने कभी नटका खेल देखा होगा, आप कल्पना करें कि इंदिरा जी राजनीति में नटका खेल दिखा रही है हमें। नटके खेल से आप परिचित हैं, रस्सी पर कैसे नट चलते हैं, कैसे क्या होता है। कि किसी को उठाकर बिठाया एक कुर्सी पे, किसी को बिठाकर उठाया फिर पटका। कि किसी को उठाकर बिठाया एक कुर्सी पे, किसी को बिठाकर उठाया फिर पटका। कोई द्वार पर खड़ा, कोई छत पर चढ़ा, कोई खाट पर पड़ा, फिर भी है खटका। कोई द्वार पर खड़ा, कोई छत पर चढ़ा, कोई खाट पर पड़ा, फिर भी है खटका। बांस लिए रस्सी पर खड़े मंत्री, बांस लिए रस्सी पर खड़े मंत्री सोचते हैं, अब गिरे तब गिरे, दे दे तब झटका। कि बांस लिए रस्सी पर खड़े मंत्री सोचते हैं, अब गिरे तब गिरे, दे दे कब झटका। कोई कोई हाथों पर चला, कोई खा रहा है कला, इंदिरा जी दिखा रही है खेल हमें नटका, इंदिरा जी दिखा रही है खेल हमें नटका। ये कुछ कवि थे, अभी कृष्णा आपको सुना रहा हूँ। एक चिट्ठी खाद्य मंत्री के नाम, कुछ दो तीन वर्ष पहले देश के कुछ मंत्रियों ने बहुत खाद्य समस्या पर विचार किया और कहा कि ये देश में खाद्य की बहुत समस्या, लोगों को अनाज तक खाने को नहीं मिलता है। कुछ मंत्रियों ने कहा कि देश के लोग अगर अनाज खाना छोड़कर खली खाना शुरू कर दें तो समस्या का हल हो सकता है। खली आप सब जानते हैं, जो हमारे यहाँ बैलों को भैंसों को खिलाई जाती है।
कभी कभी आप खाते हैं?
हाँ, तो
आप भी खाते हैं क्या?
तो आप तो मेरा साथ देते हैं गोविंद, तो हमेशा। तो उन्होंने ये भी समझदारी की, डॉक्टरों से परीक्षण कराकर बताया कि इसमें वो सारे विटामिन हैं जो जौ में चना में बाजरा में होते हैं, तो खा लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने एक सच्चा नागरिक होने के नाते नेताजी खाद्य मंत्री को पत्र लिखा और कहा कि हम तो और भी बहुत सी चीजें खा सकते हैं। मैंने उनको सुझाव दिए, एक चिट्ठी के रूप में ये कविता है खाद्य मंत्री को। चिट्ठी
खाद्य मंत्री।
पूज्य खाद्य मंत्री जी, जब तक आप इस पद पर हैं तब तक के लिए नमस्कार।
जब तक
पूज्य खाद्य मंत्री जी, जब तक आप इस पद पर हैं तब तक के लिए नमस्कार। अत्र अकुशलम तत्रास्तु, हम लिखने के आदि हो गए, अत्र कुशलम तत्रास्तु, हम राजी खुशी हैं, भगवान आपको भी राजी खुशी रखे। लेकिन मामला क्योंकि दूसरा है यहाँ भूखे आदमी का। अत्र अकुशलम तत्रास्तु, आजकल मैं खली खा रहा हूँ, आपके मंत्रालय के प्रति अपना फर्ज निभा रहा हूँ। खली वैसे तो खाने में अच्छी है, पर इसमें दो तीन बातें बुरी हैं। एक तो ये आसानी से पचती नहीं है, दूसरे स्वादिष्ट इतनी है कि दोबारा खाने के लिए बचती नहीं है। इसे खाने के बाद घंटों जुगाली करनी पड़ती है, इसे खाने के बाद घंटों जुगाली करनी पड़ती है, नहीं तो एक कमबख्त भंग की तरह दिमाग पर चढ़ती है। खली की जगह हम खपरेल का प्रयोग करें तो कैसा रहे, क्योंकि आकृति दोनों की एक जैसी होती है। खली की जगह हम खपरेल का प्रयोग करें तो कैसा रहे। भगवान कृष्ण ने भी बचपन में मिट्टी खाई थी, उस समय भी शायद देश में खाद्य की ऐसी समस्या आई थी। भगवान हम आपके राम राज का पूरा आदर्श निभाएंगे, आप हमारे घरों में पेड़ लगवा दीजिए, हम कंदमूल खाएंगे। कबूतर कंकड़ खाकर जीते हैं, क्या हम पक्षियों से भी गए बीते हैं। कोयले महंगे हैं, नहीं तो हम खाकर दिखा देते। कोयले महंगे हैं, नहीं तो हम खाकर दिखा देते। ईंटें ठीक दामों पर मिल जाती तो हम उन्हें केक की तरह चबा जाते। ईंटें ठीक दामों पर मिल जाती तो हम उन्हें केक की तरह चबा जाते। कृपया एक बात बताएं, खाद्य की जगह यदि हम खाद खाना चाहें तो कौन सी किस्म का खाएं। खाद्य की जगह यदि हम खाद खाना चाहें तो कौन सी किस्म का खाएं, जिससे भूख भी मिटे और शरीर भी उपजाऊ हो जाए। एक मंत्र का, जिससे भूख भी मिटे और शरीर भी उपजाऊ हो जाए, सिर में बालों की जगह गेहूं और जौ की बालियां बढ़ने लगे। सिर में बालों की जगह गेहूं और जौ की बालियां बढ़ने लगे, अंगुलियों से सेम और मटर की फलियां झड़ने लगे। चीनी नहीं मिले तो चाय में यमुना का रेता डाल लिया करें, अंडे की जगह कंडे उबाल लिया करें। हम नाश्ते में ताजी अखबार भूनकर खा लिया करें तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे। हम नाश्ते में ताजी अखबार भूनकर खा लिया करें तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि अखबार में कुछ चित्र होते हैं जो बड़े विचित्र होते हैं, उनमें कहीं आप होते हैं कहीं आपके मित्र होते हैं। क्योंकि अखबार में कुछ चित्र होते हैं जो बड़े विचित्र होते हैं, उनमें कहीं आप होते हैं कहीं आपके मित्र होते हैं। कई दिनों से घर में अन्न नहीं था, खरीदने को धन नहीं था, भूख से तंग आकर मैंने नए प्रयोग आजमाए हैं, नमक मिर्च में छोंक कर अपने पुराने जूते बनाए हैं, बड़े स्वादिष्ट बने हैं, गरीब आदमी की मस्ती, बड़े स्वादिष्ट बने हैं, लगता है उबले हुए चने हैं, जूते आपने भी कई बार खाए होंगे। जूते आपने भी कई बार खाए होंगे पर इतने स्वादिष्ट नहीं बन पाए होंगे। जूते आपने भी कई बार खाए होंगे पर इतने स्वादिष्ट नहीं बन पाए होंगे। अंत में आप मेरी एक छोटी सी विनय सुन लीजिए, अपना एक लंबा सा भाषण टेप कराकर हमें भिजवा दीजिए, हम उसी में से अपनी खाद्य सामग्री चुन लिया करेंगे। जिस दिन रोटी नहीं मिलेगी आपका भाषण सुन लिया करेंगे। हम उसी में से अपनी खाद्य सामग्री चुन लिया करेंगे, जिस दिन रोटी नहीं मिलेगी आपका भाषण सुन लिया करेंगे। आपके विभाग की बड़ी कुर्सियों को नमस्कार, छोटियों को प्यार, आशा है आप भोजन कर चुके होंगे, आपका भूखा एक नागुर।
रसिक श्रोताओ, हास्य के सरोवर में आप बहुत अधिक डूब रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा रस परिवर्तन करें और अब इस मंच पर दिल्ली से आई सुरीली गजल गो शायरा नूतन कपूर को बुला लें। नूतन जी की आवाज और उनके भावों का संगम अपना एक अलग महत्व रखता है। तो सुनिए गजल आपके सामने पेश कर रही हैं नूतन कपूर।
प्यार की निशानी है, आंखों ही में खो जाना प्यार की निशानी है, आंखों ही में खो जाना प्यार की निशानी है। मन से उनकी चर्चा अब रोज की कहानी है, मन से उनकी चर्चा अब रोज की कहानी है।
और इसका दूसरा पहलू, चहचहों की पीड़ा में सहमे सहमे आंसू है, चहचहों की पीड़ा में, चहचहों की पीड़ा में सहमे सहमे आंसू है। कांटों की चिताओं पर फूलों की जवानी है, कांटों की चिताओं पर फूलों की जवानी है, पंछियों की चोंचों के मिलने से हुआ मालूम, पंछियों की चोंचों के मिलने से हुआ मालूम। प्यार से विमुख होना मौत की निशानी है, प्यार से विमुख होना मौत की निशानी है। मैं तो मर गई होती नींद के मरुस्थल में, मैं तो मर गई होती, मैं तो मर गई होती नींद के मरुस्थल में, स्वप्न ही में आ जाना उनकी मेहरबानी है, स्वप्न ही में आ जाना उनकी मेहरबानी है। और अंतिम इसका मक्का, ऐसे ही नियंत्रण है मन पे भी मेरा नूतन, ऐसे ही नियंत्रण है, ऐसे ही नियंत्रण है मन पे भी मेरा नूतन। जैसे मेरी मुट्ठी में सागरों का पानी है, जैसे मेरी मुट्ठी में।
आंखों ही में खो जाना प्यार की निशानी है, मन से उनकी चर्चा अब रोज की कहानी है। नूतन जी से आपने ये खूबसूरत गजल सुनी और श्रोताओं के अनुरोध पर हम एक बार फिर नूतन जी से आग्रह करते हैं कि वो मंच पर आएं और एक और पूरा सर और खूबसूरत गजल पेश करें। नूतन कपूर।
अनजान सी आहट में पहचान सी आहट क्या, अनजान सी आहट में पहचान सी आहट क्या, दरवाजे पे इस दिल के हल्की सी ये खटखट क्या, दरवाजे पे इस दिल के हल्की सी ये खटखट क्या। यूं फूल न क्यों खिलते टहनी पे अंधेरे की, यूं फूल न क्यों खिलते टहनी पे अंधेरे की चांदी से उन हाथों ने उल्टा नहीं घूंघट क्या, चांदी से उन हाथों ने उल्टा नहीं घूंघट क्या। और एक शेर सुन लीजिए, आपको समर्पित कर रही हूँ। झुरमुटे सितारों का ये रात नशीली थी। शेर सुनिए,
बिल्कुल आज भी लागू हो रहा है।
झुरमुटे सितारों का ये रात नशीली थी, कमबख्त ने कर दी है मदिरा में मिलावट क्या। झुरमुटे सितारों का ये रात नशीली थी, कमबख्त ने कर दी है मदिरा में मिलावट क्या। रातों का तो क्या कहिए, दिन में भी तेरे सपने। रातों का तो क्या कहिए, दिन में भी तेरे सपने। इन बावर नैनों ने पाला है ये झंझट क्या।
नूतन कपूर से आपने दो गजलें सुनी। अब मैं हमारे देश के युवा कहें या तेजी से उभरते हुए कहें, मगर जो भी हैं, हास्य और व्यंग के आज के इस दौर के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हैं भाई अशोक चक्रधर। अशोक चक्रधर के व्यंग तीखे, बामानी और कहने का अंदाज बड़ा ही प्रभावशाली है। आमंत्रित हैं भाई अशोक चक्रधर।
मंच पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई थी, हमारा नंबर ही नहीं आया।
मंच पर बैठे बैठे
बहुत देर हो गई थी, हमारी एक टांग भी सो गई थी। सो जाती भाई साहब, बहुत देर पालती लगा के बैठना पड़ जाए, टांग सो जाती। और मंच पे इतने सारे कवि हो तो कुछ तो कवि सो जाते। टांग की क्या चलाई, समूचा शरीर सो जाता। जी हाँ, पूरा समग्र क्रांति हो जाती शरीर में नींद की। तो मंच पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई थी, हमारी एक टांग भी सो गई थी। सो हम उठे, एक आदरणीय कवि मित्र सार्थक निगाहों से पूछ बैठे कहाँ। क्योंकि मंच के पीछे जाने का कवियों के लिए एक खास मतलब हुआ करता है, जानते हैं आप सब। कहाँ, हमने अपनी कन्नी उंगली उठाई वहां। बचपन में स्कूल में उठाते थे, या मंच पे भी जरूरत पड़ गई। हमने अपनी कन्नी उंगली उठाई वहां और मंच से उतर आए तो सोचा कर भी आए, चलो इस तरफ से भी राहत पा जाए। सो मंच के पिछवाड़े घूमने लगे, कोई उचित शुद्ध सा सही सा स्थान ढूंढने लगे। चलते चलते गली के मोड़ तक आ गए, सही जगह पा गए। और जब हम गुनगुनाते हुए किसी ने कमर में डंडा गड़ाया।
कमर में
मुड़ कर देखा तो सिपाही नजर आया। हम हैरान, उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान, डंडा हटा के गुर्राया, चलो एक तो पकड़ में आया।
चलो
एक तो पकड़ में आया। हमने कहा क्या मतलब। वो बोला ऐसे करतब और पूछता है मतलब के बच्चे पब्लिक प्लेस पर मना है,
डॉट डॉट डॉट,
पब्लिक प्लेस पर डॉट 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 मना है। हमने कहा ऐसा कोई कानून नहीं बना है। उसने कहा जबान लड़ाता है, अभी हम ही को कानून पढ़ाता है, चल थाने। और हम लगे हकलाने, सिपाही जी हम कवि हैं, कविता सुनाते हैं, आपने गलत आदमी को छेड़ा है। वो बोला पिछले दो भी खुद को कवि बता रहे थे।
पिछले दो भी
खुद को कभी बता रहे थे इसीलिए छोड़ा है, तुझे नहीं छोड़ूंगा तुझे नहीं छोड़ूंगा, हो जा मुस्तैद। दिल्ली पुलिस एक्ट सेक्शन 95, 100 रुपया जुर्माना, 8 दिन की कैद। दिल्ली पुलिस एक्ट सेक्शन 95, 100 रुपया जुर्माना, 8 दिन की कैद। हल्ला मचाएगा 92 लग जाएगी, तू तड़ाक बोलेगा 93 लग जाएगी। हमने कहा सिपाही जी ये 92, 93, 95 क्या बलाएं हैं, ये 92, 93, 95 क्या बलाएं हैं। तो मूछों पे हाथ घुमाते हुए बोला कानून की धाराएं हैं, कानून की धाराएं हैं। तो हमने सोचा अरे वाह वाह रे कानून हमारा, अरे धारा बहाने पे भी धारा। तो वो बोला हाँ वो तो लगेगी,
लगेगी
वो तो लगेगी और सजा भी भुगतनी पड़ेगी, 8 दिन की कैद और 100 रुपए जुर्माने के लगेंगे, 20 रुपए दे दे यहीं छोड़ देंगे, 20 रुपए दे दे यहीं छोड़ देंगे। अब हमारा भय कुछ भागा और अंदर का स्वाभिमान जागा। हमने कहा रिश्वत, रिश्वत नहीं देंगे, चलो अब तो थाने ही चलेंगे। वो बोला पछताएगा, अबे यहां तो मैं ही हूं, वहां थानेदार भी खाएगा। तो नहीं थानेदार ही खाएगा। खैर साहब थाने गए, थाने में थानेदार को जगाया,
जगाया क्या बात है,
थाने में थानेदार को जगाया तो ऊंघते हुए बड़बड़ाया, अबे ने खट्टू किसे पकड़ लाया, अबे ने गट्टू किसे पकड़ लाया, रफा दफा कर कुछ ले लेवा कर, रफा दफा कर कुछ ले लेवा कर। तो सिपाही बोला हुजूर दफा तो कर दूं पर रफा नहीं मानता है, दफा तो कर दूं पर रफा नहीं मानता है। अच्छा रफा नहीं मानता है तो क्या वो इसका अंजाम नहीं जानता है, FIR लिख दे 25-54-59 जेब में चक्कू रख दे। जेब में चक्कू रख दे। तो सिपाही बोला हुजूर इसका चौकटा चक्कू से मेल नहीं खाता है, इसका चौकटा चक्कू से मेल नहीं खाता है। तो थानेदार गरजा तो उल्लू की तुम ऐसों को पकड़ के क्यों लाता है, ऐसों को पकड़ के क्यों लाता है, 16-1-14 लगा दे, 16-1-14 लगा दे, 20 ग्राम चरस बरामद दिखा दे। तो भाई साहब चरस और चक्कू सुन के माथा चकराया, कुछ बोले इससे पहले जेल का सिंचा नजर आया, 20 का नोट हमने सिपाही को सौंपा, मगर वो भौंका 20 वहां थे
20 वहां थे
20 वहां थे यहाँ 100 लगेंगे। हमने कहा भैया कवि सम्मेलन में पहुंच जाएं और वहां से कुछ पा जाएं तो 100 भी देंगे। खैर साहब किसी भी तरह से सिपाही जी को संतुष्ट करके कवि सम्मेलन में आ गए और सोचने लगे कि अपना नाम अशोक चक्रधर की जगह है शोक चक्रधरी रख लें, शोक माने दुख होता, हम अपना नाम अशोक चक्रधर की जगह है शोक चक्रधर ही रख लें और अपने नाम के आ को थाने की दीवार पर लिख दें, वहां पहले से लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, कल से लोग पढ़ा करेंगे असत्यमेव जयते, असत्यमेव जयते, असत्यमेव जयते।
वाह 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 वाह।